सत्संग जी प्रेम से करना, सत्संगत अभी आप सभी के दर्शन हो रहे हैं। दिल्ली लौटने के बाद पिछले ही रविवार को दोपहर यहाँ से रवानगी हुई। इस यात्रा के पहले पड़ाव की तरफ जिस तमाम यात्रा का विवरण अभी कविता के रूप में सुंदर ढंग से आपके सामने प्रस्तुत किया गया, विवरण तमाम जहाँ जहाँ पर भी जाने का मौका मिला, अक्सर अधिक स्थान वो थे जहाँ कई कई बरस हो चुके थे, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो या फिर नजीबाबाद। नजीबाबाद तो पहुँचते ही महापुरुष कहने लगे कि पिछली बार हमारे यहाँ 1996 में आप आए थे, 20 बरस के बाद फिर आना हुआ है। और उसके बाद जितने भी स्थान थे, चाहे वो जसपुर हो, रुद्रपुर हो, वहाँ पर करीब 10 बरस के बाद फिर से जाने का मौका मिला। और गजरौला में भी आखिरी पड़ाव जो था, वहाँ पर भी कई कई बरसों के बाद सत्संग करने का मौका मिला। और सभी जगह पर इतने विशाल रूप बने जहाँ उत्साह और लगन के साथ सभी भक्तजन पहुँचे। और उसके अलावा राज जाते हुए भी, जैसे अभी विवरण में आपने सुना कि चंद सत्संग भवनों में रुकने का मौका मिला और वहाँ पर ही संगतें इस कदर पहुँचकर अपनी खुशी को अभिव्यक्ति दे रहे थे। और वही श्रद्धा भक्ति भाव से युक्त कहाँ कहाँ इस परिवार के अंग बसते हैं, पहाड़ों पे बसते हैं, मैदानों में बसते हैं, कहीं टापुओं पर बसते हैं, जहाँ पर भी बसते हैं, देश दूर देशों में किसी स्थान पर भी विचरण करते हैं, सभी की एक ही लगन है कि ये जो दातार ने सांस बख्शे हैं, ये सच के लेखे लग जाएं, ये परमार्थ पर चलते हुए जीवन की यात्रा तय हो जाए, भक्ति वाला रंग इस मन के ऊपर चढ़ा रहे, ये ज्ञान की उत्तम दात जो हमें मिले है, जिसके कारण आत्मा का कल्याण और लोक की यात्रा को तय करते हुए भी जो रोशनी हमारे लिए मददगार साबित हो रही है, इसी ज्ञान की लौ को हम जगाए रखें और इसका पूरा पूरा लाभ उठाते रहें, ताकि ठोकरों से बचे रहें, कदम कभी लड़खड़ाएं नहीं, भ्रम और भ्रांतियां जिस रोशनी के कारण नाश हुई हैं, कहीं इस लौ को बुझा ना दें और कहीं फिर उन भ्रम और भ्रांतियों की लपेट में आ जाएं। इसलिए भक्त हमेशा ही ये सुचेत रहते हैं, चेतन रहते हैं और यत्न करते हैं कि चाहे दाएं बाएं किसी तरफ से भी हवा चले, दीपक की लौ जगी रहे। हवाएं रुकती नहीं हैं, वो तो अपना काम करती ही हैं, हवा भी मालिक ने ही बनाई है, लेकिन जैसे हथेली से हम लौ को चारों तरफ से ढांक लेते हैं कि हवा भी चल रही है और लौ भी जगी रहे, इसी तरह से भक्त निष्ठापूर्वक सत्संग करते हैं, सेवा करते हैं, स्मरण करते हैं निरंकार का, और फिर संसार के हालातों के बावजूद इस संसार में विचरण करते हुए इस लौ को जगाए रखते हैं। तो ये सिलसिला लगातार युगों युगों से चलता आ रहा है। महापुरुष संत जन भक्त जन संसार में इस कदर जीवन को अपने उन्होंने पेश किया जिसमें यही पहलू उजागर होकर सामने आता है कि किस तरह से महापुरुष संत जन इस सच के साथ जुड़े रहे, इस सच का आधार लेकर इस संसार की यात्रा को तय करते चले गए, जिन्होंने इसी मालिक खालिक को ही प्रधानता जीवन में दी। एक तरफ संसार था, एक तरफ निरंकार था, और भले ही निरंकार ने ही संसार बनाया है लेकिन निरंकार को ही विशेषता दी, इसी को ही प्रधानता दी। जैसे कलाकार और कला, अब कला भी तो कलाकार की ही है लेकिन ये भक्त को एहसास हमेशा रहा है कि कला भी वजूद में तभी आई क्योंकि कलाकार ने वो रचना की। अगर कलाकार वो रचना ना करता तो कला भी अस्तित्व में ना आती, यानी कि महत्ता कलाकार की है। अगर लहरें उठती हैं तो समुद्र के कारण लहरें उठती हैं, अगर समुद्र ना हो तो लहरों का वजूद नहीं बन सकता है। इसी तरह से इस मालिक खालिक परमात्मा को ये हमेशा प्रधानता देते आए हैं, विशेषता देते आए हैं। जब संसार और संसारिक सिलसिलों और संसारिक शक्तियों का जिक्र आया है, एक कायनात का जिक्र आया है, कुदरत का जिक्र आया है, तो भक्तों ने बाखूबी ये बात जान ली थी कि कादर के कारण ही कुदरत है और कुदरत के ज़रिए दातार कादर क्या क्या इस संसार में, जिसको हम नेचर कहते हैं, यूनिवर्स कहते हैं, एनर्जीज कहते हैं, कितने कितने हम नाम देते हैं, कितनी कितनी मैनिफेस्टेशंस जो एक ही परम अस्तित्व से उपजी हैं, जो करता है, तो इसलिए ये कादर को विशेषता देते हैं कुदरत के बनिस्पत। यानी कि इसी के साथ ये भाव से युक्त होकर जीवन के सफ़र को तय करते आए हैं कि दातार तू ही, तेरी महिमा अपरंपार है क्योंकि तू अपरंपार है, जिसदा उरला कंडा कोई नहीं, जिसदा परला पार नहीं, जो बेहद्दा है, जिसको कोई नाप नहीं सकता है, जिसको कोई सीमित नहीं कर सका है, कोई पैमाना नहीं बना है, जो इतना विशाल है, इतना इसका विस्तार है, जिसका कोई ठौर ठिकाना हम उस तरह से नाप नहीं सकते हैं, तो इतना ये पसारा है, इसका अकल जहाँ तक दौड़ सकती है उससे भी कहीं आगे इसका अस्तित्व मौजूद है। कई जिक्राते हैं, साइंसदान जिक्र करते हैं कि सोलर सिस्टम है, एक सोलर सिस्टम है, और फिर आगे बताते हैं कि कई सोलर सिस्टम्स हैं, कई गैलेक्सीज हैं, और उस जहाँ तक हमारी सोच जा सकती है उससे भी कहीं कहीं आगे आगे इसका पसारा है। तो ये निराकार परमात्मा ऐसा अस्तित्व है, तो इसका कोई वही बात जो शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी कह रहे हैं कि जिसदा उरला कंडा कोई नहीं, जिसदा परला पार नहीं, लेकिन इतना असीम होने के बावजूद जो भक्तों की अवस्था है उसके बारे में शायर जिक्र करता है कि हालांकि दो जहानों में समाते नहीं हो तुम, हैरत है कि इस दिल में समाते हो किस तरह, कि दो जहानों में भी तुम समाते नहीं हो, वो कोई संभाल कर ही नहीं सकता है क्योंकि वहाँ पर सीमाएं हैं, लेकिन कहते हैं कि हैरत है इस दिल में समाते हो किस तरह, हालांकि दो जहानों में भी समाते नहीं हो तुम। तो ये दिल में इसको बसा कर रखते हैं, इसी असीम को हृदय में बसा के रखते हैं, और हृदय में बसाने के कारण ही एक आनंद की महसूसियत ही आत्मा करती है, मन सुकून महसूस करता है और जीवन फिर इसी के लेखे लगा देते हैं। इसी का डेरा जो महापुरुष संत जन कहते हैं, आज भी आप पुरातन रचनाएं जो साध संगत के साथ जुड़े हुए जिनको मालिक ने तौफीक बख्शी, ऐसी ऐसी रचनाएं लिखी, शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के समय में, बाबा गुरबचन सिंह जी के समय में, और लगातार गीत कविता के रूप में कैसे कैसे उत्तम ख्याल जो पूर्ण भक्ति के ऊपर, सच के ऊपर, मानवता के ऊपर आधारित हमको श्रवण करने को मिलते आ रहे हैं। और इसी तरह से महापुरुष संत जन कैसे कैसे भाव ये सामने रखते आए हैं कि ये दिल में समाया हुआ है और कभी ये दिल से बाहर ना चला जाए। जो रचना एक और पंक्ति ध्यान में आती है जो अक्सर बोली जाती थी कि जे जामे जान ना देवा कोई चौकीदार भी दे दे, कि वाकई ही तुझे मैं जाने ना दूं, कोई भी पल ऐसा हो ना आए जब तुझसे नाता तोड़कर मैं जीवन जीऊं। एक इस यात्रा के दौरान भी दास जगह जगह पर जहां सत्संग भवनों में ऐसे पारिवारिक रूप में समय बने तो वहां पर भी दास यही जिक्र करता आ रहा था कि जल प्यारा माछड़ी लोभी प्यारा दाम, मात प्यारा बाल का त्यो भक्त प्यारा राम। कि जैसे जल मछली को जल प्रिय है क्योंकि जानती है कि जल ही मेरा जीवन है, इसलिए तेरे संग नाता टूटना तुझसे निकसी फूट मरा, ये एक अवस्था उस मछली की होती है। जितनी देर मछली से नाता टूटा रहता है उतनी देर ही वो तड़पती है। कई बार कोस्टल एरिया में कई बीचेस पे जाने का मौका मिलता है, लहर आती है, मछलियाँ बीच के ऊपर तड़प रही होती है क्योंकि लहर उनको बाहर ले आई और लहर तो वापस समुद्र की तरफ लौट गई, लेकिन मछलियाँ वहीं रेत पे पड़ी हुई तड़प रही होती हैं। अब जितनी देर वो पानी से बाहर होती हैं वो तड़प रही होती हैं, उछल रही होती हैं, लेकिन कोई सज्जन वहाँ से गुज़रता उसी मछली को उठाकर वापस पानी में फेंक देता है, वो उसी तरह से फिर आनंदित हो जाती है, वापस उसी अवस्था में, आनंद की अवस्था में आ जाती है। यानी कि जितनी देर नाता टूटा रहा मछली का जल से उतनी देर ही बेचैनी थी, उतनी देर ही दम घुट रहा था, उतनी देर ही सांसें उखड़ रही थी, जीवन हाथों से जा रहा है ये महसूस हो रहा था। यानी कि जल प्यारा माछड़ी लोभी प्यारा दाम, कि एक लोभी को दाम ही प्रिय है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, ये उसकी हालत होती है कि किस प्रकार से चमड़ी चली जाए लेकिन इतना लोभी होता है। लोभी प्यारा दाम, एक पति घर से निकलने लगा और पत्नी की कहती है जा रहे हो, और काम पे जा रहे हो तो आगे से पति कहता है कि ये जो लालटेन जल रहा है इसको बुझा देना, ऐसे खाम का तेल फूकता रहेगा। पति गया आगे और थोड़ी देर के बाद वापस लौट आया तो पत्नी कहती इतनी जल्दी वापस आ गए हो, तो कहते बस मुझे ख्याल आ गया कि तूने वो बत्ती बुझाई के नहीं, लालटेन बुझाई के नहीं, वैसे ही तेल तो नहीं नष्ट कर दिया। तो आगे से पत्नी कहती है मैं इतनी मूर्ख नहीं हूँ, मैं भी जानती हूँ और आप भी बोल के गए थे, मैंने वो कर दिया था, लेकिन ये काहे की समझदारी, आप जो खाम खा वापस आया उतनी तो आपने जूतियाँ ही घिसा दी, वो भी तो नुकसान हुआ। कहता मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ, जूतियाँ मैंने बगल में उठा रखी हैं। तो इस प्रकार से वही बात की चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, तो लोभी प्यारा दाम मात प्यारा बालिका, माँ को बच्चा प्रिय होता है, माँ की ममता उस पर निछावर होती है, एक एक धड़कन बच्चे को समर्पित होती है। इस कदर कोई कुपूत भी हो जाता है फिर भी माँ दुआएं देती रहती है। तो इस प्रकार से मात प्यारा बालिका माँ को बच्चा प्रिय होता है। और आप टीवी चैनल्स पर भी देखते हैं कितने कितने ऐसे पशु जानवरों को भी दिखाते हैं कि बच्चे के ऊपर कोई भी थोड़ा हमला हो रहा है उस जानवर पशु का भी, तो उसकी माँ किस तरह से दौड़ती है, वो खूंखार शेरों का सामना करती है ये जानते हुए भी कि उसका कोई मुकाबला नहीं है शेर के साथ, लेकिन एक एक धड़कन उस बच्चे को समर्पित है, पूरी ममता है, वो अपनी जान मानती है बच्चे को। तो मात प्यारा बालिका और फिर आगे त्यों भक्त प्यारा राम, कि भक्त को भी राम इसी तरह से प्रिय है, इसीलिए इसको दिल में बसाए रखता है, इसका दामन मजबूती से थामे रखता है, इसको कभी आंखों से ओझल नहीं होने देता है, इसी का आधार हमेशा लिए रखता है, इसी को ही समर्पित हो जाता है। तो महापुरुष संतों ने युगों युगों से इंसान को यही पहचान करने के लिए ही प्रेरणा दी है, इसी अवस्था में रहकर जीवन के सफर को तय करने की ही प्रेरणा दी है, इसी सच को जानकर इसको अपनाकर इस जीवन के सफर को तय करने की प्रेरणा दी है, आवाज़ें बुलंद की हैं, पैगाम दिए हैं, चाहे उसके लिए कितनी कुर्बानियां ही क्यों नहीं दे दी, कितने बलिदान ही नहीं दे दिए, कितनी यात्राएं ही नहीं सह ली, लेकिन पीड़ा एक ही कि इंसान का उद्धार हो जाए, इंसान का कल्याण हो जाए, इंसान भव सागर से पार उतर जाए, ये अपने जीवन के मनोरथ को पूरा करे। इंसान वाला जन्म मिला है तो इंसानी पहचान अपनी बनाए, तो इसके लिए कितने कितने परोपकार ये लगातार युगों युगों से होते आए और उसके लिए कितने कितने दाम भी चुकाने पड़े, लेकिन पीड़ा एक ही थी कि इंसान का उद्धार हो जाए, हर आत्मा का कल्याण हो जाए। इसीलिए उन भक्तों महापुरुषों वलियों गुरु पीर पैगंबरों के वो तप त्याग वो बलिदान वो रोशन मीनार की तरह आज कायम है। तो महापुरुष यही संदेश दे रहे थे, अभी भी जिस यात्रा पे गए जहाँ पर हिंदी भाषा में उत्तर प्रदेश में अगर उत्तराखंड में जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर अगर देहरादून गए या मसूरी गए वहाँ गढ़वाली भाषा में इस निराकार का गुणगान कर रहे थे, और जब जसपुर की तरफ गए वो उत्तराखंड का दूसरा हिस्सा है जहाँ पर गढ़वाली नहीं जहाँ कुमाऊँ है वो वहाँ कुमाऊँ भाषा में पहाड़ी भाषा में वो यही पैगाम यही संदेश दे रहे थे। और अगर रुद्रपुर में पहुँचे तो वहाँ नेपाल से इतनी संगत पहुँच गई क्योंकि उधर बॉर्डर करीब लगता है नेपाल का, और नेपाल से ही कितनी बसें भर कर वहाँ आ गईं और वो भी अपनी यही अरदास प्रार्थना कर रहे थे कि हमें उम्मीद थी पीछे भी कि नेपाल की तरफ भी आना होगा, लेकिन वहाँ इतनी अशांति रही है, कुछ समय शांति रहती है फिर कोई ना कोई कारण हो जाता है तो वहाँ प्रोग्राम बन नहीं पाता। पिछले बरस भी जब चार प्रांतीय समागमों का आखिरी समागम बर्धमान बंगाल में था पिछली मार्च में, तो उस वक़्त भी वहीं से ध्यान बना था कि सिलीगुड़ी की तरफ से नेपाल में दाखिल हो जाएंगे, और लेकिन उन्हीं दिनों में वहाँ पर फिर वो चक्का जाम, कहीं माओवादियों के एजिटेशन चल रही है, कभी कुछ हो रहा है। तो नेपाल के महापुरुष भी वहाँ पहुँचे और उन्होंने भी अपनी वो भक्ति और प्रेम और उसी को अभिव्यक्ति दी और यही प्रार्थना की कि कृपा करे दातार कि हमारे मुल्क में भी हमेशा शांति रहे, ताकि आना जाना लगा रहे और सभी प्रगति करते चले जाएं, एक आगे बढ़ते चले जाएं। ये जितनी भी ऐसी एजिटेशंस चलती हैं इस मुल्क में या किसी मुल्क में, वो मुल्क को और ज़्यादा पिछड़ जाते हैं। जितना कुछ हाथ में आ सकता है वो भी हाथों से चला जाता है और कितने हम पिछड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से वहाँ पर नेपाली भाषा में भी वो कुमाऊँ भाषा या गढ़वाली भाषा की तरह, वहाँ पर नेपाली भाषा में भी वो यही संदेश, यही पैगाम दे रहे थे कि हम जान ले अपने प्रीतम मालिक प्रभु परमात्मा को, इसके साथ नाता जोड़ लें। ये जन्म बार बार हाथ नहीं आता है, हम ये पहचान अपनी असली बना लें। ये जिस्मों से ऊपर जो हमारी असली पहचान है, एक नूर के रूप में, एक आत्मा के रूप में, हम ये पहचान बना लें, ये रियलाइजेशन हमारे हिस्से में आ जाए। इस पे आधारित ही महापुरुष संत जन ये पैगाम दे रहे थे, क्योंकि इसी निशाने के ऊपर रहते हैं। जैसे वो मछली की आंख का निशाना लगाना, जो महाभारत काल से हमें वो कथाएं सुनने को मिलती हैं, और उसमें बताया गया कि देखने वाले देख रहे हैं और उन्होंने निशाना बारी बारी से लगाना है, और पहले वाले को पूछा तो वो क्या नज़र आ रहा है, वो कहता है पहाड़ नज़र आ रहे हैं, आसमान नज़र आ रहा है, पेड़ नज़र आ रहे हैं, पत्ते नज़र आ रहे हैं और मछली नज़र आ रही है। तो वो निशाना लगाता है, फिर दूसरा लगाता है, तुझे क्या नज़र आ रहा है, मुझे पेड़ नज़र आ रहा है, और क्या नज़र आ रहा है, मुझे मछली नज़र आ रही है। और इस प्रकार से जो टंगी हुई है मछली वो नज़र आ रही है, तो फिर तीसरे को तुझे क्या नज़र आ रहा है, मुझे मछली नज़र आ रही है। यानी कि नैरो डाउन हो रहे हैं कि पहले को सब कुछ नज़र आ रहा है मछली के अलावा भी, दूसरे को वो सारे आसमान या पहाड़, उसकी बजाय वो और नैरो डाउन हुआ, उसको केवल वृक्ष और वो मछली नज़र आ रही है। अब तीसरा और नैरो डाउन हुआ, अब वो वृक्ष से भी ज़्यादा कहीं कंसंट्रेशन उसकी केवल मछली तक हो गई। अब जब चौथे की बारी आई तो तुझे क्या नज़र आ रहा है, कहता मुझे केवल और केवल आँख नज़र आ रही है मछली की, क्योंकि आँख का ही निशाना लगाना था। अब वो कह रहा है मुझे और कुछ नज़र नहीं आ रहा, केवल और केवल आँख नज़र आ रही है। और जिसको वो केवल आँख नज़र आ रही थी वही था जो कामयाब हुआ निशाना लगाने में, बाकी सब चूकते चले गए। यानी कि कहने का भाव कि जिसको केवल आँख नज़र आ रही थी वो फिजिकल लेवल के ऊपर ये नहीं है थे, बाकी सब कुछ हवा की तरह उड़ गया था, वो मौजूद था उसी तरह से ही, लेकिन उसकी एकाग्रता की बात हो रही है कि वो आँख के ऊपर इतना एकाग्र है, उसको और कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। जैसे अक्सर रात को भी क्रिकेट मैच हुआ और सारे खुशी मना रहे कि इंडिया जीत गया, तो अक्सर कमेंट्री जब देते हैं, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि कोई भी टीम का खिलाड़ी जब चौके छक्के मार रहा होता है तो कमेंटेटर ये कहता है कि ये इस बैट्समैन को बॉल जो है वो फुटबॉल की तरह नज़र आ रही है, हालांकि उसका आकार फुटबॉल जितना नहीं हो गया होता है, लेकिन इस कदर उसकी दृष्टि ऐसी टिक चुकी होती है बॉल के ऊपर कि वो ऐसे उसको मार रहा होता है जैसे उसका आकार बढ़ चुका है बॉल का। इसी तरह से ये एकाग्रता आँख पे लगी हुई है, इसलिए वो कामयाब हो जाता है। इसी तरह से महापुरुष संत जन खुद भी इस एक के ऊपर एकाग्र रहते हैं, और इनका पैगाम और संदेश भी इसी एक के ऊपर एकाग्र रहता है, उसी पे केंद्रित रहता है। बच्चा बोलता है वो भी यही कहता है कि जान लो इस परमात्मा को, जवान बोलता है जान लो अपने मालिक खालिक को, बुज़ुर्ग बोलता है, बहन बोलती है, माता बोलती है, बच्ची बोलती है, वो भी यही कहते हैं कि जान लो इस परमात्मा को, इससे अनजान रहोगे तो आत्मा को भी भुगतान करना पड़ेगा, ये आवागमन के बंधन में जकड़ी रहेगी, और एक जीवन को जो जी रहे हो इसमें भी भ्रांतियाँ और भ्रम बने रहेंगे, मन में भी अंधेरा और आत्मा भी अंधकार में विचरण कर रही है। अब दोनों को रोशनी दे दो, दोनों को रोशन कर लो, आत्मा को रोशन कर लो, आत्मा भी उजाले को प्राप्त करके आवागमन के बंधन से निजात पा ले और ये मन भी रोशन हो जाए, यहाँ की भी सारी भ्रांतियाँ और भ्रम मिटाकर इस कदर इस संसार में विचरण करते चले जाएं। तो आओ साध संगत, कहने का भाव यही है कि महापुरुष संत जनों ने यही संदेश, यही पैगाम, यही संदेश दिए हैं कि वाकई ही एक सूफी संत भी कहते हैं कि अखा खोल वेख तू को है, गैरियत नु छड़ वजूदों और जान के तू जो हैं, एक को पढ़िया ते एक को डिठा फिर कौन कहे तू दो हैं, हस्ती छड़ के वेख बुलेशा जिदा नाम जपे तू ओ है। कि वाकई ही कि तू देख कि तू कौन है, तू को है, गैरियत नु छड़ वजूदों। अक्सर गैरत का इस्तेमाल किया जाता है, ये बड़ा गैरतमंद है। यहाँ पर वो गैरत का मतलब अभिमान है, अहंकार है। गैरियत नु कड़ वजूदों, अपने वजूद में से ये अभिमान को निकाल दें। गैरियत नु कड़ वजूदों और देख तू जो हैं और इको पढ़िया ते इको डिठा, कि पढ़ने के वक्त भी पढ़ा कि तू एक है और जब दर्शन किए ज्ञान की दृष्टि से तब भी यही नज़र आया कि एक ही है, दो नहीं है। इको पढ़िया ते इको डिठा फिर कौन कहे तू दो हैं, दो यानी कि डुअलिटी, दूजा भाव, विसारे दूजा भाव जियो। जब एक ही पढ़ा, एक ही डिठा, एक ही देखा, एक ही जाना, इको पढ़िया ते इको डिठा फिर कौन कहे तू दो हैं, फिर दो नहीं रहते हैं। उस अज्ञानता के कारण हम दो क्या, तीन चार पचास मान लेते हैं कि राम और अल्लाह हो गए, दो तो हो ही गए, तीसरा अकाल पुरख हो गया, चौथा गॉड हो गया, इसी तरह से पता नहीं कितने हो गए परमात्मा, जो एक ही था। तो इको पढ़िया ते इको डिठा फिर कौन कहे तू दो हैं, फिर अगली एक और स्टेज आ गई कि हस्ती छड़ के वेख बुलेशा जिदा नाम जपे तू ओ है। कि वाकई ही तू वही तो है, परमात्मा का ही तो रूप है। इस हस्ती को छोड़ के देख, इस हस्ती को छोड़ के देख, इस कदर समर्पित हो जा जिदा नाम जपे तू ओ है। इसी तरह से भक्त ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, वो इसीलिए कहा गया है। एक और जगह पर महापुरुष सूफी संत कहते हैं कि अपनी गोदी आपे ही बैठे, कि गोद भी अपनी है और बैठा भी खुद है, बन के मोहन लाला। तो वाकई ही इस कदर एकमिक अवस्था हो जाती है कि वो ड्युअलिटी खत्म हो जाती है, केवल और केवल एक के ऊपर केंद्रित हो जाते हैं। तो आओ साध संगत, कहने का भाव यही है कि महापुरुष संतों ने, वलियों गुरु पीर पैगंबरों ने जो पैगाम जो संदेश दिए हैं वो इसी तरह से इसी और ही अग्रसर करते आए हैं। हर मानव हर इंसान को ये पैगाम देते आए हैं और भक्त यही बीड़ा उठा लेते हैं कि जहाँ हमारा उद्धार हुआ है, जहाँ हमारे भ्रम मिटे हैं, इसी तरह से औरों को भी भ्रम ये मिटते चले जाएं। और इस यात्रा में, इस टूर में भी यही कुछ देखने को मिला कि कितने कितने उपकार महापुरुष कर रहे हैं, किस कदर भक्तों में वो लगन है। चाहे जो बाकायदा प्रोग्राम थे वो तो पांच ही थे जो खुले मैदानों में होने थे, लेकिन उसके अलावा जहाँ जहाँ भी थोड़ी देर भी रुकने के मौके मिले, वहाँ ही संगतें उत्साह से पहुँचनी शुरू हुई, चाहे वो रुड़की का सत्संग भवन, चाहे मुजफ्फरनगर का, मुजफ्फरनगर के बाद नरसिंह कला का, या फिर देहरादून तो जो बड़ा प्लॉट लिया गया है उसकी आगे की प्लानिंग के लिए रुकना था कि वहाँ पर जो पहले ही एक भवन पुराना इतना बड़ा बनाया था पीछे ही चंद बरस पहले, वो भी इतना छोटा हो चुका, अब और ज़्यादा बड़े स्थान की ज़रूरत, तो वहाँ पर बड़े शेड की प्लानिंग के लिए रुकना था। लेकिन जो ही वहाँ बाईपास के उस प्लॉट के पास पहुँचे, देखा कि पहले ही संगतें इतनी बड़ी तादाद में वहाँ मौजूद हैं, तो इस तरह से संगतों के साथ समय बिताने को इतना मिला। और मसूरी में भी जाने का कारण कि वहाँ पर भी नीचे कॉटेज का नव निर्माण हो रहा है, वो गिराकर जो पीछे ही बरसातों में गिराई गई और अब उसका निर्माण कार्य चल रहा है, तो वो देखने के लिए वहाँ आगे की प्लानिंग के लिए जाना था। तो वहाँ पर भी मसूरी की संगतें भी उसी तरह से प्यार श्रद्धा के साथ रात्रि पहुँचे तब मौजूद, और सुबह चलने से पहले फिर वहाँ पर तांता लग गया। और इस प्रकार से जहाँ जहाँ पर भी जाने के अवसर मिले वहाँ पर ही ये परोपकार भी देखने को मिले, और साथ ही साथ ये प्रेम भक्ति देखने को मिली। इस तरह से भक्त इस परमार्थ को, अपनी प्रीत को ये निभाते चले जा रहे हैं। तो दास और अधिक शब्दों का सहारा ना लेता हुआ इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहेगा। सत्संग जी धन।
इसी तरह सभी महात्मा बैठे रहें, सुमिरन में मिलजुल के सभी योग